दीवा के कहने पर आर्यांश उसके साथ मॉर्निंग वॉक के लिए आया हुआ था। दीवा काफी खुश थी और आर्यांश के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। वॉक के दौरान दीवा भागते हुए आर्यांश को खुद को पकड़ने के लिए कह रही थी। दौड़ते हुए वो बार बार पीछे देख रही थी और इसी चक्कर में व्यांश से जा टकराई थी। व्यांश भी एक अनजान शख्स से टकराने पर गुस्सा होने वाला था, लेकिन उसने सामने दीवा को देखा तो उसके चेहरे के भाव नर्म पड़ गए। इसी बीच आर्यांश वहां पहुंचा और दीवा को अपनी बाहों में भर लिया। वो व्यांश को वार्निंग भरी निगाहों से देख रहा था। अचानक व्यांश को अपने सामने देखकर दीवा भी चौंक गई थी। पिछली बार रॉयल बॉल पार्टी में वो व्यांश से मिली थी और व्यांश ने उसे धमकाया भी था कि वो आर्यांश और दीवा के रिश्ते के बारे में उसके मॉम डैड को बता देगा। दीवा ने इस बारे में आर्यांश को नहीं बताया क्योंकि उसने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया था। दीवा थोड़ा घबरा गई थी और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। आर्यांश ने तिरछा मुस्कुराते हुए सर्द आवाज में कहा, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर अग्रवाल के पास इतना टाइम है कि वो यहाँ मॉर्निंग वॉक तक के लिए आते हैं। बिल्कुल मिस्टर कपूर, अपने लिए थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है। चलो, इसी बहाने हमारी एक बार फिर से मुलाकात हो गई, व्यांश ने भी सहजता से जवाब दिया। उसने अपनी कैप उतार दी थी। और तुम्हें किसी ने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ? अगर मेरा बस चले तो मैं तुमसे कभी न मिलूँ, आर्यांश ने काफी रूखे तरीके से कहा। अगर ताकत की बात की जाए तो कपूर इंटरनेशनल के आगे अग्रवाल इंडस्ट्रीज कुछ नहीं थी, लेकिन आजकल अग्रवाल इंडस्ट्रीज गलत तरीके से कपूर इंटरनेशनल के शेयर्स खरीद रही थी। इस वजह से कपूर इंटरनेशनल के शेयर बहुत हाई जा रहे थे और लोग अग्रवाल इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे थे क्योंकि वे इतने महंगे नहीं थे। इससे उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही थी। आर्यांश ने पहले ही सार्थक को इस काम में लगा दिया था। बस वो इंतजार कर रहा था कि जिस दिन उसे अग्रवाल इंडस्ट्रीज के खिलाफ कोई सबूत मिल जाएगा वो उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगा। आर्यांश आंखों में नफरत लिए व्यांश को घूर रहा था तो वहीं व्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो बोला, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके साथ जो लड़की है उसका मेरे साथ रिश्ता तय होना है। उसके माता पिता मुझे पहले ही पसंद कर चुके हैं। आज दीवा को खुद के फैसले पर प्राउड हो रहा था जब उसने आर्यांश को अपने और व्यांश की ब्लाइंड डेट के बारे में पहले ही बता दिया था। आर्यांश ने बेपरवाही से कंधे उचकाए और कहा, अगर तुम इसके मॉम डैड को पहले से ही जानते हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपको करना कुछ नहीं है, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि वे मुझे पहले से पसंद करते हैं, तभी उन्होंने हमें डेट पर भेजा, व्यांश बोला। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ख्याली पुलाव बनाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बेहतर होगा कि अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, आर्यांश ने तंज भरे लहजे में कहा। आर्यांश की बात का जवाब देने के बजाय व्यांश एक अजीब तरीके से हंस पड़ा। दीवा उसे घूर कर देखने लगी। क्या वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था कि वो उसके मॉम डैड को जाकर बता देगा? नवीन और प्रार्थना को पता चलेगा तो वे कैसे रिएक्ट करेंगे? ये सोचकर ही दीवा के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए थे। आर्यांश ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो दीवा को वहां से ले जाने ही वाला था कि तभी पीछे से व्यांश ने दीवा का हाथ पकड़ लिया। दीवा की अचानक चलते हुए रुकने पर आर्यांश ने पलट कर देखा तो व्यांश उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ था। दीवा एक अजीब मुसीबत में फंस गई थी। एक तरफ उसका हाथ आर्यांश ने पकड़ रखा था तो दूसरी तरफ से व्यांश ने। ये क्या कर रहे हैं मिस्टर अग्रवाल, प्लीज लेट मी गो, दीवा ने सख्त आवाज में कहा। जहां दीवा आराम से बात करते हुए व्यांश को छोड़ने के लिए कह रही थी, वहीं आर्यांश ने बिना सोचे समझे व्यांश के मुंह पर एक पंच मार दिया। व्यांश को आर्यांश से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। वो बच नहीं सका और उसके होठों के कोनों से खून बहने लगा था। उसने तुरंत दीवा का हाथ छोड़ दिया। आर्यांश कपूर, क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव करना सिखाया है? बिल्कुल किसी गुंडे की तरह, व्यांश ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। हर कोई जानता था कि अतीत में कपूर खानदान के रिश्ते अंडरवर्ल्ड से थे, लेकिन फिलहाल वो पूरी तरह से लीगल बिजनेस करते थे और बिजनेस से जुड़े हुए थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, आर्यांश गुस्से में बोला। आखिर वो कैसे सहन कर सकता था कि वो जिस लड़की से प्यार करता है उसे जाकर कोई ऐसे ही पकड़ ले और वो आराम से खड़ा उसे हाथ छोड़ने की गुहार करेगा? वो तो हाथ काट देने वाले लोगों में से था। 3 दिन बाद एले के कसीनो में आकर खेलकर शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो, व्यांश ने भौहें उठाकर पूछा। व्यांश की तरफ से ये आखिरी कोशिश थी जब वो उस जमीन को हासिल कर सकता था। मार्केट में ये खबर फैल गई थी कि अग्रवाल फैमिली ने उस जमीन का डिपॉजिट जमा कर दिया है, पर हर कोई जानता था कि अगर आर्यांश कपूर को कुछ पसंद आ गया है तो वो उसे हासिल करके ही रहता है। और मैं तुमसे किसी तरह की शर्त क्यों लगाऊं? क्या तुम उसके लायक हो, आर्यांश ने उसे ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा। तो इसका मतलब तुम्हें हारने का डर लग रहा है, व्यांश ने उसे सीधे सीधे चैलेंज कर दिया था। आर्यांश को ऐसे लोगों से नफरत थी जो बेवजह की बहस करते थे। उसने बेपरवाही से सिर हिलाकर कहा, बोलो शर्त क्या है? इस जमीन पर जिसे हम दोनों हासिल करना चाहते हैं, व्यांश बोला। आर्यांश उस पर हंसना चाहता था। न जाने क्या सोचकर वो ये बेवकूफी कर रहा था। ये उस जमीन को बचाने का एक बहुत ही बड़ा तरीका था, पर आर्यांश अब पीछे नहीं हटना चाहता था। और हारने वाले को क्या करना होगा, आर्यांश ने पूछा। वो जमीन छोड़नी होगी और 300 मिलियन कंपनसेशन के देने पड़ेंगे, व्यांश बोला। 300 मिलियन मेरी हैसियत के हिसाब से काफी कम है, 1 बिलियन तय करते हैं, आर्यांश ने जवाब दिया। ये बात सब जगह फैली हुई थी कि कपूर फैमिली का कोई भी इंसान जुआ नहीं खेलता है, तो सबको यही लगता था कि उन्हें जुआ खेलना नहीं आता है, जबकि सच इससे पूरी तरह अलग था। आर्यांश कसीनो में पहले भी काफी बार बड़ी रकम जीत चुका था। व्यांश ने उससे इतनी बड़ी रकम की उम्मीद नहीं की थी। उसको भी बाकी लोगों की तरह यही लगता था कि आर्यांश को जुआ खेलना नहीं आता है। अब उसे अपनी शर्त पर शक होने लगा था। 3 दिन बाद एक दूसरे के साथ कसीनो में खेलने की बात तय हो जाने के बाद वे दोनों वहां से निकल गए थे। आर्यांश अभी भी दीवा का हाथ पकड़कर चल रहा था। ये एक मामूली सी घटना थी जिसके बाद उसका मूड खराब नहीं हुआ, उल्टा वो खुश था कि अब वो उस जमीन के साथ 1 बिलियन रुपए भी जीतने वाला है। आर्यांश जितना बेपरवाह था, दीवा उतनी ही परेशान थी। उसने आर्यांश से पूछा, क्या सच में तुम व्यांश अग्रवाल के साथ खेलने के लिए जाने वाले हो? हाँ बिल्कुल, आर्यांश ने गंभीर आवाज में जवाब दिया। लेकिन तुम्हें तो गैम्बलिंग नहीं आती है ना, दीवा ने हैरानी से पूछा। और तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे गैम्बलिंग नहीं आती, आर्यांश ने रुककर हल्का हंसते हुए कहा। वो दीवा के बालों को प्यार से सहला रहा था। वो सब बकवास है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो चलो घर पर एक छोटा सा गेम हो जाए, आ जाओ घर चलकर कॉल ब्रेक खेलते हैं, आर्यांश ने हल्के लहजे में कहा। लेकिन उसके लिए तो 4 लोग लगते हैं और हम सिर्फ 2 हैं, अगर सुमन माँ को भी शामिल कर लेंगे तो भी एक इंसान की जरूरत पड़ेगी, दीवा ने हंसकर कहा। अब तो दीवा को पूरा यकीन हो गया था कि आर्यांश को गेम के बेसिक रूल तक नहीं पता थे। उसे तो ये तक नहीं पता था कि वो जिस गेम को खेलना चाहता है वो 2 लोगों के साथ नहीं खेला जा सकता है। अब क्या कर सकते हैं, मेरी वाइफ इतनी भोली है, उसका मासूम चेहरा देखकर आर्यांश लाचारी से बोला। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, दीवा ने मुंह बनाकर जवाब दिया।
लेकिन मैंने तो कहा कि मेरी वाइफ भोली है, इसमें बेवकूफ बीच में कहां से आ गया, देखो तुम खुद मान रही हो, आर्यांश जानबूझकर उसे तंग करने लगा था। देवा ने उसकी तरफ देखकर मुंह बनाया और उसे घूरते हुए कहा, मैं नहीं तुम बेवकूफ हो जो 4 लोगों के साथ खेला जाने वाला गेम 2 लोगों के साथ खेलना चाहते हो, जानते नहीं क्या कॉल ब्रेक खेलने के लिए 4 लोग लगते हैं, अगर 2 लोग कम हैं तो हम उन्हें बुला भी सकते हैं, तुम्हारी इंटेलिजेंस देखकर मुझे डर लग रहा है कि हमारे बच्चे कैसे होंगे, कहीं मेरे जीन्स बर्बाद ना हो जाएं, आर्यांश काफी ड्रामेटिक वे में बोला तो दीवा ने उसके कंधे पर हल्का सा मारा। ठीक है घर चलते हैं फिर बात होगी, दीवा ने मुंह बनाकर कहा और वहां से चलने लगी। कुछ ही देर में दीवा और आर्यांश अपने विला पर पहुंच चुके थे। आने के बाद दीवा सबसे पहले नहाने के लिए गई। वो नीचे आई तो उसने देखा कि आर्यांश ने उनके साथ खेलने के लिए श्रेष्ठ और वर्तिका को बुला रखा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद वे चारों मिलकर कॉल ब्रेक खेलने लगे थे। गेम शुरू होते ही श्रेष्ठ ने दीवा की तरफ आंख मार कर कहा, मिस गोइंका अगर आपको आर्यांश तंग करे तो आप मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाना अच्छे से जानता हूँ। आर्यांश ने श्रेष्ठ को घूर कर देखा। वो आजकल दीवा को परेशान नहीं करता था, बल्कि उनका रिश्ता तो बहुत ही प्यार भरा हो चुका था। गेम की शुरुआत करने से पहले श्रेष्ठ ने कहा, चलो पहले ही तय कर लेते हैं कि हारने वाले को क्या करना होगा। हारने वाले को क्या करना होगा से क्या मतलब हुआ तुम्हारा, ये गेम तो सिर्फ पैसों के लिए खेला जाता है ना, दीवा ने हल्का हंसकर कहा। हाँ लेकिन हम चारों में से मुझे ऐसा कोई नहीं लगता जिन्हें पैसों की जरूरत होगी, श्रेष्ठ बोला और फिर वर्तिका और आर्यांश की तरफ देखा। वर्तिका और आर्यांश ने तुरंत मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए, भले उन्हें पैसों की क्या जरूरत थी। लेकिन इसी बीच दीवा ने हाथ उठाया और बच्चों सा मुंह बनाकर कहा, मुझे जरूरत है और मैं यहाँ सबसे गरीब हूँ। मजाक कर रही हो मिस गोइंका, तुम जिस लड़के को डेट कर रही हो वो इतने पैसे कमाता है कि तुम्हारा मुंह खोलने के 5 मिनट बाद तुम्हारी बताई हुई चीज को खरीद कर सामने रख सकता है और तुम खुद को गरीब कह रही हो, इस हिसाब से तुम लोगों में सबसे गरीब मैं हूँ, श्रेष्ठ ने सिर हिलाकर कहा। हाँ पैसों के लिए खेलना बहुत बोरिंग है, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, वर्तिका ने बोरियत भरे लहजे में कहा। तो बताओ फिर क्या करें, दीवा ने पूछा। मैं तो कहता हूँ जो हारेगा वो यहाँ अपने सारे कपड़े उतार कर खड़ा होगा, जैसे ही श्रेष्ठ ने मजाकिया तरीके से कहा वर्तिका ने उसकी तरफ तकिया फेंक कर मारा। तुम जैसे इंसान से मुझे इसी की उम्मीद थी, इतना घटिया प्लान कौन बनाता है, वर्तिका ने सिर हिलाकर कहा। बस भी करो मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ, पर तुमने कभी मेरी इज्जत नहीं की, अब क्या मारकर मेरी बेइज्जती करोगी, श्रेष्ठ उसे आंखें बिखाते हुए बोला। हाँ वर्तिका बिल्कुल ठीक कह रही है, हम दोनों लड़कियां हैं और हमारे लिए कपड़े उतारना बहुत बुरी बात है, कुछ और सोचते हैं, दीवा ने भी वर्तिका की बात का समर्थन किया और फिर उन दोनों ने हाईफाई किया। श्रेष्ठ उसे देखकर मुस्कुराया और उसे परेशान करते हुए बोला, कोई बात नहीं तुम हार गई तो अपने बॉयफ्रेंड से कपड़े उतरवा लेना। आर्यांश अब तक शांति से उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन जैसे ही श्रेष्ठ उसके कपड़े उतारने पर आया उसने उसे तकिया फेंक कर मारा और ठंडे लहजे में कहा, बस भी करो, हद हो गई मजाक की। आर्यांश बीच में इन्वॉल्व हो गया था, तो वो जरूर कुछ अच्छा आइडिया बताने वाला था। दीवा उम्मीद भरी निगाहों से आर्यांश की तरफ देखने लगी, मानो अब इस गेम में हारने वाले की किस्मत उस पर टिकी थी। तो आज का पार्ट थोड़ा लाइट था, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। वैसे आप लोगों का पता नहीं, लेकिन हम लोग दोस्तों में भी इसी बात पर बहस होती रहती है कि कौन ज्यादा गरीब है। पता नहीं सबको खुद को ज्यादा गरीब बताने में ज्यादा मजा आता है।